ओम शांति। बेहद का यज्ञ, बेहद की साधना, बेहद के रतन, बेहद की शिक्षा, बेहद का ज्ञान और बाबा की बेहद की मुरली और मुरली में बाबा के पुरस्कार के रूप में दिए गए टाइटल्स, इस बेहद के यज्ञ के हर बेशकीमती रतन को बाबा ने खूबसूरत टाइटल से सजाया है। एक बेशकीमती रतन बाबा के द्वारा दिए टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी को सार्थक करने वाली, सदैव हांजी का पाठ पक्का कराने वाली, मम्मा बाबा की साकार पालना से सजाई मूर्ति, मधुर भाषिणी आदरणीय दीदी चक्रधारी जी हम सबके समक्ष हैं। हम सभी सहृदय एक हाथ की ताली से आपका अभिनंदन करते हैं। त्याग, तपस्या, स्नेह और अथक सेवा की प्रतिमूर्ति दीदी जी बाल्यावस्था में ही इस यज्ञ के संपर्क में आए। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई राजनीतिक शास्त्र में स्नातक के रूप में आईपी कॉलेज दिल्ली से की। सन 1960 में आपने अपना जीवन ज्ञान गंगा के रूप में समर्पित किया। विश्व के प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर, जो वर्तमान में शक्ति नगर में स्थित है, में आपने जानकी दादी व गुलजार दादी जी से सेवाओं के प्रति हमेशा प्रेरणाएं ली। वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई जी के साथ सेवा की शिक्षा ली। इन्हीं प्रेरणाओं को साथ रखकर आप वर्तमान में रशिया एवं बाल्टिक देशों की सेवा के निमित्त भी हैं। वर्तमान में महिला प्रभाग की चेयरपर्सन हैं। अपने नाम के अनुरूप आप पूरे विश्व में भ्रमण करती रहती हैं और ईश्वरीय ज्ञान को सरल शब्दों में प्रस्तुत करके अद्भुत ईश्वरीय पालना का अनुभव कराती हैं एवं स्वदर्शन चक्रधारी बनाने का पुरुषार्थ करने की युक्तियां बताती रहती हैं। आज दीदी हमें अपनी मधुर वाणी से बताएंगी, ब्राह्मण जीवन मजबूरी का नहीं मजबूती का है। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मैं अभी जब आ रही थी तो रास्ते में देख रही थी कि कुछ ग्रुप्स में खड़े बातचीत कर रहे हैं, कोई बाबा की कमरे की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रकाश स्तंभ पर खड़े हैं और कोई मार्केट की तरफ जा रहे हैं और कोई सामान लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जब बाप दादा अव्यक्त वतन से आकर हम बच्चों से मिलते थे बहुत शुरू शुरू में, तो उस समय बहुत बच्चे एकत्रित आ जाते थे, लेकिन हमारे बड़े दीदी जी जो इस यज्ञ के प्रारंभ में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, वे कभी भी किसी को भी क्लास के समय पर इधर से उधर घूमता हुआ नहीं देखना चाहते थे और फौरन कहते थे सबको बुलाओ और सब आकर क्लास में बैठे। जब क्लास चल रही है तो फिर क्लास में ना आकर अपनी नई नई क्लासेस करने के लिए क्यों इधर उधर खड़े हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे केवल दीदी जी की याद आई और मैं देख रही हूं अभी आने शुरू हुए हैं, क्योंकि बाबा सदा कहते हैं जो समय जिस चीज का है उस समय अगर वो कार्य किया जाता है तो वो कार्य सुशोभित होता है। अगर जिस समय जो कार्य करना है उससे भिन्न कार्य कोई किया जाए तो वो कार्य सुशोभित नहीं होता है। मानो यहां कमेंट्री से कितनी अच्छी योग की अनुभूति, अनुभवी आत्मा अपने अनुभव के आधार से करा रही थी, लेकिन कुछ बाबा के बच्चे अपने ही मेहनत में लगे हुए थे, तो मुझे आया क्यों नहीं ये भी सब अंदर आ जाते तो इतना सुंदर अनुभव कर पाते। जिस पर जब इन्होंने मुझे ये कहा कि मैं साकार बाबा मम्मा की पालना में भी पली, तो मुझे बाबा के उस समय के बोल याद आए जब हमको हमारी बड़ी दादियां सुनाया करती थी कि एक बार मधुबन नहीं सिंध हैदराबाद में जब बाबा ने कहा कि बच्चों को याद का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, तो अपनी एक आदरणीय दादी जी जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूपेण इस यज्ञ में अर्पित कर दिया था, वो ऊपर कमरे में चली गई और वहां निरंतर योग की भट्टी लगा ली। बाबा क्लास करा रहे थे क्लासरूम में, बाबा को ऐसा लगा कि आज ये बच्ची यहां है नहीं, तो बाबा ने चारों तरफ देखकर कहा कि आज वो बच्ची जो ऊपर गई थी, मैं नाम नहीं बता रही, वो बच्ची कहां है? तो किसी ने कहा कि बाबा उन्होंने भट्टी का प्रोग्राम रखा हुआ है और वो ऊपर भट्टी कर रही है। तब बाबा ने कहा किसी ने समय पर उनको खाना पानी सब चीजें पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? कुछ ने पहुंचाई थी, कुछ नहीं भी पहुंचाई थी। तो बाबा ने कहा बुलाओ उस बच्ची को नीचे, कहो बाबा बुला रहे हैं। तो बुलाने पर वो नीचे आ गई, तो बाबा ने उन्हें यही कहा कि बच्ची तुम ऊपर बैठकर क्या कर रही थी? कहा बाबा को याद कर रही थी। बाबा ने कहा बाबा तो नीचे आया हुआ था, मुरली सुना रहा था, और तुम ऊपर किसको याद कर रही थी? तो वो चुप सी हो गई, क्या कहे उस समय बाबा को। तब इस बात पर ही मैं आपको यही बात बताना चाहती हूं, क्योंकि जब संगठित योग है उस समय वो योग के वाइब्रेशंस ना योग लगाने वालों का भी योग लगा देंगे। इसलिए बहुत बड़ा सहयोग केवल मात्र इतनी बड़ी योगियों की इस सभा में ही अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा इतनी बड़ी सभा योगियों की आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसे समय का लाभ ना उठाकर हम अपना अलग बैठकर योग करें, ये भी वास्तविकता नहीं होती। और दूसरी बात, बाबा ने ये भी कहा कि मुझे मेरे घर में याद करो। कुछ ही दिन हुए ये बाबा की वाणी लगातार चली और ये महावाक्य सबके सुने हुए हैं। बाबा सदा कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं और जहां हूं, मुझे वो वैसा जानकर वहां याद करो। उस समय बच्चों ने एक क्वेश्चन उठाया था कि बाबा आप जब बॉम्बे में गए या दिल्ली में होते हो या मधुबन में होते हो तो हम आपको परमधाम में कैसे याद करें? तब तो हम आपको मधुबन में याद करते हैं, दिल्ली में याद करते हैं, या बॉम्बे आप गए हैं तो बॉम्बे में याद करते हैं। तब बाबा ने कहा था कि बच्चे बाबा चाहे कहां भी गया है लेकिन बाबा का धाम परम धाम ही है। जिस समय योग में बैठते हो, मेरी याद में बैठते हो, मुरली के समय अगर आपको ये आ रहा है कि बाबा आए होंगे, बाबा मुरली सुना रहे होंगे, बच्चे सन्मुख सुन रहे होंगे, ये एक अलग प्रकार की याद है। ये होना कोई अनुपयुक्त नहीं, ये ठीक है, अनुचित नहीं है। लेकिन अगर विशेष रूप से मेरी याद में बैठते हो तब मुझे मेरे घर में ही मुझे याद करो। क्यों बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि जब याद में बैठो तो मुझे मेरे घर में याद करो? क्योंकि जब भी हम किसी को भी याद करते हैं तो इस साकार जगत में कोई ना कोई बैकग्राउंड, बैक में कोई ना कोई दीवार, तस्वीर, सीनरी, घास, वृक्ष, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही जिसके आगे हम बैठे हैं। तो कभी भी बाबा की याद करते करते अगर ध्यान डाइवर्ट होता है तो कभी वो दीवार दिखाई देती है या चित्र दिखाई देता है या वृक्ष दिखाई देता है, जैसा भी बैकग्राउंड होता है। लेकिन जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तब बाबा की ये आज्ञा है कि मुझे मेरे घर में याद करो, कि आत्मा ज्योति स्वरूप है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योति का देश है, शांति धाम है और वहां ज्योति बिंदु प्यारे बाबा अपनी सर्व शक्तियों रूपी किरणें सदा काल के लिए बच्चों को शक्ति रूप में दे रहे हैं और मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान के सन्मुख शांति धाम में उपस्थित हूं। अगर बाबा से ध्यान हटेगा भी तो ज्योति देश में ही ध्यान जाएगा और ज्योति देश से फिर ज्योति बिंदु में ध्यान को लाना ये कठिन नहीं होगा, सरल होगा। इसलिए बाबा के इस आदेश को हम जरूर समझने की कोशिश करें कि बाबा हमको बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं जो हूं और जैसा हूं और जहां हूं मुझे वहां ही याद करो। तो सब तरफ से जब मन को हटा करके और अपने सम्मुख केवल मात्र अपना शांति देश है और शांति धाम जहां शांति शांति और प्रकाश ही प्रकाश है, उस ज्योति देश में ज्योति बिंदु बाबा के सम्मुख मैं आत्मा जिसका निज स्वरूप ज्योतिर्मय है और जिसका निज धाम ज्योतिमय धामी है, मैं अपने घर में अपने बाबा के सम्मुख उपस्थित हूं। ये याद बड़ी सरल याद है, इस याद को मुश्किल नहीं कहेंगे। नहीं तो योग लगाएं हम, योग कैसे लगाएं हम? और बाबा कई बार हमको कहते हैं योग अक्षर ही कहना बंद कर दो, तुम मेरे बच्चे योग कैसे लगाएं? नहीं कहो, बाबा को याद करें कहो। और सचमुच कितना सुंदर ये बाबा का स्पष्टीकरण है, क्योंकि हम कोई योग जैसे दुनिया इसको मुश्किल कह चुकी है, इसलिए योग नाम से विभिन्न प्रकार की योग की विद्याएं सारे विश्व भर में प्रचलित हैं और विश्व की आत्माएं जो योग से प्रीत रखने वाले हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के योग सीख कर उस योगेश्वर से अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कोशिश में सफल नहीं हो पाते। कारण क्या कि जब तक उन्हें ये याद ही नहीं है कि मैं कौन हूं और मुझ आत्मा का निजी स्वरूप क्या है और मुझ आत्मा के परम पिता है कौन, जब तक स्वयं को जाना नहीं, बाप को पहचाना नहीं, घर का एड्रेस पता चला नहीं, योग कैसे लगेगा। और बाबा कहते हैं योग नहीं, ये याद है बच्चे, मैंने तुझे भूली हुई चीज को याद करा दिया। तुझे आज तक ये पांच तत्वों का नाशवान चोला है ये बचपन से तुझे याद कराया गया और जन्म जन्म ये याद पक्की हो गई। इसे याद करना नहीं पड़ता, स्वप्न में भी याद है तो जागृत भी याद है। बाबा ने केवल मात्र इस साकार धरा पर आकर हमें हमारी पहचान की याद दिलाई कि तुझे मालूम है तू कौन है। जब हमको मालूम पड़ गया तो जिस चीज का मालूम पड़ गया अब उस याद में स्थिर होने में मेहनत की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हूं ही आत्मा, शरीर हूं ही नहीं। तो जब मैं शरीर नहीं हूं, केवल शरीर मेरा माध्यम है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और मेरा बाबा ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव है। मुझे जब ये याद आ गई तो इसमें मुश्किलात की कौन सी बड़ी बात आई, पता चल गया कौन हूं और किसका हूं। अब इसके लिए कोई पूछे कितना समय याद करे, किस समय याद करे, वास्तव में देखा जाए तो जो चीज सत्यता है, मैं आत्मा हूं, ये सत्यता है। और आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, ये सत्यता है। तो सत्यता को स्थिर होने में मेरा ये प्रश्न हो कि कितना समय सत्यता को याद रखूं, ये तो कोई प्रश्न का वास्तव में कहना ही प्रश्न उठाना ही व्यर्थ सा लगता है। जो हूं वो अपने को समझूं और जिसका हूं वो अपने को समझना, यही तो योग है ना। इसी को याद कहो कि भूली हुई याद को बाबा ने पुनः पुनः स्मृति में दिला दिया। जिसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूं कि एक इंसान बैठा है, कोई भी आपका संबंधी बच्चा घर में कुछ भी है, लेकिन बड़ा चुप या किसी सोच में बैठा है, ऐसा लग रहा है आपको। आप उसको पूछते हो क्यों आज ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो। अब वो चाहे आपको कहे कुछ नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ रहे हो कि कुछ तो जरूर है, ये जो ऐसे बैठा है अवश्य कुछ है। आप फिर कहते हो बताओ तो सही क्या है, आज ऐसे कैसे बैठे हो। क्योंकि उसने किसी बात को अपने दिल में बिठा लिया, चाहे वो बात अनुचित थी या बात कहने वाला ही सही नहीं था, वो बोल उसे अखड़ा या अच्छा नहीं लगा और वो बोल उसने चित्त में बिठा लिया और बार बार उसको स्मृति में ला रहा है कि देखो मेरे से कितना खराब बोला। बोलने वाले ने एक बार बोला लेकिन जिसको बोला वो उसको मन में रिवाइज करता है, मन में उसके दोहराई जाती है वो बात या वो बोलने वाले का मूड या रूप, वो दृश्य उसके सामने आता है और वो दृश्य या वो सोच उसके चेहरे पर प्रकट हो रही है और वो कहता कुछ नहीं, चुप होके बैठा है। लेकिन उसे बैठा देखकर भी कोई पूछता है कि क्या बात है, आज कुछ है तो जरूर। कहते नहीं कुछ नहीं, कहते कुछ नहीं क्यों नहीं, कुछ जरूर है। मानो कोई अनुचित बात किसी को कही जाए या कई बार कोई खुशी की बात किसी के मन में होती है, बड़ा चेहरा खिला हुआ ऐसा बैठा है जैसे आज कोई लॉटरी मिल गई हो, तब भी कभी कभी कोई पूछता है भी आज तो बड़ा चेहरा खिला हुआ क्या बात है। कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। दूसरा कहते नहीं कुछ नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है क्योंकि आपका चेहरे से दिखाई तो दे रहा है ना। तो बुरी बात है या अच्छी बात है, जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वो चिंतन चित्त में चलने के कारण हमारे चेहरे पर प्रत्यक्ष होता है। और चेहरा दूसरों को दिखा देता है कि आज ये चिंतित है या आज ये एक्स्ट्रा खुशी में है। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि सारा दिन अपने आप को याद तो कराओ कि मैं कौन हूं और किसका हूं, क्योंकि आधा कल्प नहीं कहेंगे पूरे कल्प से ही इस स्मृति की नेचुरल स्टेट चाहे आधा कल्प थी लेकिन इसकी स्मृति विस्मृत हो चुकी हुई थी। अब विस्मृत स्मृति को फिर से स्मृति में लाना, उसके लिए उसका बार बार चिंतन करने की आवश्यकता होती। तो पुनः पुनः अपने स्वरूप को स्मृति में लाए अर्थात स्वरूप को याद कर बाबा के संबंध को याद करना, इसी का नाम ही तो योग है। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जब आप बच्चों को आपका स्वरूप स्मृति में आ जाएगा और बाप के संबंध की स्मृति आ जाएगी तो आपको किसी को बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा और आपकी चलन स्वतः ही दिखाएगी कि आपने कुछ पाया है और आपके स्वरूप में कुछ विलक्षण सा इम्प्रेशन आ रहा है। ये कोई लौकिक चेहरा नहीं, इसमें कुछ अलौकिकता झलकती है। तो जब दुनिया के दुख गम की बातें हमारे प्रत्यक्ष हो जाती हैं चेहरे से और बाबा का ज्ञान चिंतन करें, अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन करें, प्यारे बाबा के संबंधों का चिंतन करें, तो क्या वो चित्त पर बैठ जाने वाली बात और जिसका रिपीट होता होता चित्त पर बैठता है, कोई भी बात अंदर बैठती अंदर लगती तब है जब उसका बार बार चिंतन होता है। कुछ अच्छा मैंने कहा उसका भी आपका चिंतन चला जो आपका चेहरा खुशनुमा दिखाई दिया, कुछ गलत किसी ने कह दिया तब भी आपके चिंतन से आपके चेहरे और चलन से पता चल रहा है कि कोई बात ऐसी वैसी हो गई। तो बाबा हमको बार बार यही कहते हैं कि बच्चे जो भी बात सुनो सुनकर छोड़ ना दो, उसका चिंतन करो। जिसका साकार में बाबा कई बार ये शब्द बोलते थे, बच्चों को लिंगे नहीं लगी ये बात, मनो अंदर जाके इस बात ने स्पर्श नहीं हृदय को भी किया। और अगर हृदय में स्पर्श हो जाए कोई बात लग जाए फिर उसको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार कई कहते हैं कोई घटना ऐसी घट जाती है भाई क्या करें निकलती नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहता है ऐसी वैसी घटना को घट में ना ले जाओ। अगर व्यर्थ की चर्चा या व्यर्थ की बात जिस बात से आपके स्वरूप का दिव्य स्वरूप नाश हो जाएगा या सत्यता आपके स्वरूप में नहीं रहेगी, ऐसी बात को बार बार चित्त में नहीं लाओ। बार बार चित्त में लाने से आपके चित्त में वो बात बैठ जाएगी और कोई आपको कहेगा, अरे छोटी सी बात हो गई, छोड़ो, क्या आप लेकर उसकी चिंता कर रहे हो। आपका ये उत्तर एक दिन निकलेगा कि मैं स्वयं भी समझता या समझती हूं कि बात तो छोटी सी है, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ना चाहते हुए भी छूट नहीं पाती, नहीं छोड़ पा रहे। नींद नहीं आ रही, भूख नहीं ठीक लग रही, क्योंकि वो बात का चिंतन चित्त में इस कदर चला कि घोट घोट कर उसको हमने अपने स्वरूप में ले आए। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर व्यर्थ का चिंतन आ गया, उस चिंतन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसे ज्यादा रिवाइज रिपीट ना करो। जब है ही बात व्यर्थ, उसको वहीं स्टॉप कर दो। और जब बाबा समर्थ बातें देता है, श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना देता है, उसका चिंतन करो बच्चे, इतना चिंतन करो कि वो बात तेरे चित्त में चली जाए, तेरे हृदय में जाकर लग जाए। आप देखो जिनको लग जाता है वो बाबा का बच्चा कितनी जल्दी बन जाता है। कोई एक भी बात उसको लग जाए, सारा ही नहीं लग जाता एकदम, लगने में टाइम लगता है, लेकिन एक भी बात लग जाए तो उसके जीवन का वो परिवर्तन आता है। और लगती तभी है बात जब सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसका चिंतन चलता है, वो हमारे स्वरूप का परिवर्तन कर देता है। इसलिए ये जो मधुबन हमको आने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है, ये ऐसी श्रेष्ठ घड़ियां हमको याद आएंगी। मौका तो मिला था लेकिन इतना लाभ उठा नहीं पाए थे। बाबा हमको कहते हैं, खाते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, बच्चे बातचीत करते हुए भी एक दो से कौन और किससे बात कर रहे हैं और किसके हैं। मैं देखती हूँ कई बार बाबा जब महावाक्य उच्चारण करते हैं तो बड़ी खुशी खुशी बच्चों से मिल रहे होते हैं, और बच्चों के सिर पर मैं ताज देख रहा हूँ, मस्तक पर चमकती हुई मणि देख रहा हूँ। हालांकि कई बार बच्चे भी ये समझते हैं कि कहाँ मेरे पर सिर पर ताज, मैंने तो कोई जिम्मेवारी अपने जीवन में उठाई नहीं अभी तक, मैं कभी अपने स्वरूप स्मृति की स्थिति में इतना आया ही नहीं, मेरे मस्तक की चमक बाबा को कैसे दिखाई दे रही है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं मैं देख रहा हूं। बाबा सदा कहते हैं मैं बच्चों को बच्चों के संपूर्ण रूप को ही देखता हूं, मैं कभी बच्चों के अपूर्ण स्वरूप को नहीं देखता। कैसे मेरे बच्चे जिनके मस्तक में चमकती हुई मणि है, जो सर्व आत्माओं की मुराद पूरी करने वाले हैं, मेरे वो बच्चे जिनके ऊपर सारे विश्व को परिवर्तित करने की जिम्मेवारी है, उस परिवर्तन के कर्तव्य को निभाने के लिए वो अपने परिवर्तन के भरसक प्रयत्न में लगे हुए हैं, चाहे वो कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो बाबा हम बच्चों को हमारे संपूर्ण स्वरूप से देखते। हम स्वयं स्वयं से पूछें, हमने स्वयं को अपने संपूर्ण स्वरूप से देखा है कभी? केवल निर्बुद्ध आत्मा का, जिसमें शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति सब कुछ हो, और ये सब खजानों से संपन्न मैं आत्मा, मेरा स्वरूप कैसा होगा? कभी अपने इस स्वरूप को इमर्ज कर देखा है? जब आपको अपना संपन्न स्वरूप प्यारा लगेगा, तब आप अपूर्ण स्वरूप से परे हटते हुए संपन्नता की तरफ बढ़ते चले जाओ। क्योंकि बाबा के बच्चे चाहे वो कितना भी और कैसा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा के घर आए हैं है तो बाबा के ही बच्चे ना। जिस पर मैं एक बार एक कहानी से सुना रही थी कि किसी ने एक मूर्तिकार से पूछा कि मूर्तिकार तू मुझे मूर्ति बनाना सिखा सकता है? तब मूर्तिकार ने यही उत्तर दिया कि मैं तो मूर्ति बनाना तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस पत्थर में एक मूर्ति को देखता हूं, और जो उसका एक्स्ट्रा पत्थर लगा हुआ होता है उस मूर्ति को छिपाए रखने वाला, मैं उस एक्स्ट्रा को उतारता चला जाता हूं, और जब वो व्यर्थ का लगा हुआ पत्थर हटता चला जाता है तो कहीं से नाक निकल आता है, कहीं आंख निकल आती है, कहीं कान निकल आता है, वो तैयार हो जाता है। मैं तो कोई मूर्ति बनाना तो मैं नहीं जानता, मूर्ति तो पत्थर में बनी हुई होती। सचमुच हम देखें, ये वास्तविक उदाहरण हम पर घटित होता है। हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि बच्चे तो वास्तव में वही कल पहले वाली देव आत्मा ही है, और आप हम सबको मालूम है कि हर पत्थर से मूर्ति नहीं बनती है। किसी पत्थर पर छेनिया थेड़ा मारो ही तो मूर्ति पत्थर टूट जाएगा, लेकिन मूर्तिकार पहचान कर पत्थर लेता है। और अगर कोई पत्थर ऐसा ही आ गया जो मूर्ति वाला नहीं होगा तो वो उससे मूर्ति नहीं बना पाएगा। कि किसी प्रकार शिव बाबा के भी बहुत बच्चे आते हैं, कोई वो बच्चे हैं जो सचमुच हम सब पत्थर बुद्धि बन चुके थे, और जब बाबा हम पत्थरों को तराशता है, समझ देता है, सत्यता बताता है, हमें हमारा ओरिजिनल रूप दिखाता है, तो जो वो मूर्तिमान बच्चे थे कभी, वो पुनः उस स्वरूप में निखरते चले आते हैं। और जो कभी वो मूर्ति बने नहीं जैसी मूर्ति बनाना चाहते हैं, वो पत्थर उस मूर्तिकार से परे हट जाता है। तो हम सबको कोई देवता बनना नहीं है, हम देवता थे, देवता हैं, लेकिन जो देव स्वरूप को छिपाने वाले संस्कार और छिपा देने वाले स्वभाव, छिपा देने वाली वृत्तियां हम सब में आ चुकी हैं, जिसका बाबा समय प्रति समय महावाक्यों में वर्णन करते हैं, हम केवल उन निषेध बातों को, ये संस्कार नहीं होना चाहिए, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोल नहीं होना चाहिए, जो बाबा हमको कहते नहीं होना चाहिए उसको ना लाएं, और जो कहता है होना चाहिए उसकी दृढ़ता को बढ़ाते चले जाएं। स्वतः ही नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी, देवता बनने में कौन सी मुश्किलात है? देवता थे, केवल एक्स्ट्रा पत्थर हम में आ चुका है, जो एक्स्ट्रा चीजें आई हैं उनको हमने उतारना है और अपने वास्तविक स्वरूप में आना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि वर्तमान समय दो ही तो पुरुषार्थ हैं, जन्म जन्म के किए हुए कर्म और देह के अभिमान के वशीभूत बनाए हुए संस्कार, इनका परिवर्तन करना है, और अपने अनादि, अपने आदि संस्कार, उन्हें जागृत करना है, उस स्वरूप में स्थिर होना है। इसलिए बच्चे, भविष्य के लिए तुझे गुण और ज्ञान से अपने को सजाना है, ये तेरी कमाई है। और जो वर्तमान में संस्कार पुराने दिए अभिमान के वशीभूत है, उनको तुझे हटाना है। दो ही तो तुझे काम करने और करना ही क्या है, जो तेरा ओरिजिनल स्वरूप है उसको निखारना है, और जो एक्स्ट्रा पत्थर आ चुका है उसको हटाना है। उसके लिए बाबा कहते हैं, योग भी सिखाता हूं, ज्ञान भी सुनाता हूं। याद से कमजोरियां हटती जाएंगी, और ज्ञान से और याद के संतुलन से गुण और ज्ञान जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप लेता जाएगा। बाबा कितना सरल करके हमको बताता है। फिर कुछ दिन हुए बाबा ने वाणी में जब ये कहा कि बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये कहता कौन है। कई बार कई बच्चे ऐसा कह देते हैं कि हम कैसे समझें कि स्वयं भगवान कह रहा, हम कैसे समझें। तब बाबा ने कहा, क्योंकि दिखाई नहीं देता, हम कैसे समझें। बाबा ने कहा, तुमको स्वयं स्वयं का स्वरूप दिखाई देता है, तुम स्वयं स्वयं को तो देख नहीं पाते और चले भगवान को देखने के लिए कि वो दिखाई नहीं देता। इस प्रकार एक बार राम श्लोक भाई बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे, कहां कोई आए, उन्होंने कहा कि आपने भगवान को देखा है, क्योंकि भगवान को देखने के चरम चक्षु तो नश्वर चीजों को देख सकते हैं, अनश्वर अविनाशी को देखने के लिए ये नाशवान नेत्र काम नहीं करते। उसके लिए बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान स्वयं दाता ही अब बच्चों को देते, जिससे हम स्वयं को भी देख पाते हैं और बाबा को भी देख पाते हैं। तो राम श्लोक भाई सुना रहे थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा बात मजाक के रूप में लेते हैं, तो क्या किसी ने आकर कहा कि क्या आप कहते हो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा है। कहा, तो आप हमको दिखा सकते हो। कहा, वैसे तो ये उन्हीं के हाथ में है, हम आपकी तरफ से जब हम उनसे मिलेंगे तब उनको कह देंगे कि वो आपसे भी मिल ले। कहा, बड़ी अच्छी बात है, हमारा भी जरा कह दीजिए कि वो हमसे भी मिल ले। कहा, लेकिन मैं उनको क्या कहूं, कौन मिलना चाहते हैं, मुझे आप अपना आई कार्ड दे दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आजकल तो ट्रेन में भी कहते हैं ना, आई कार्ड लेकर चलिए, पहचान पत्र। तो कहा, मुझे आप अपना पहचान पत्र दे दीजिए, मैं उन्हें दिखा दूं ताकि वो आपसे मिल सकेंगे। कहा, अभी तो हमारी पॉकेट में नहीं। कहा, पॉकेट में नहीं, वो आपके पास है, कौन मिलना चाहता है। अब ये आई कार्ड तो काम नहीं करेगा, आपको यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, आपको अपनी तो पहचान अभी हुई नहीं, और चले कि भगवान हमसे मिल जाए, उसको आई कार्ड बिना आपकी पहचान के आपसे मिलेगा कैसे। अब पहचान तो वास्तव में देखा जाए, ये आई कार्ड नहीं, हमारी पहचान जो बाबा ने हमें हमारे स्वरूप के समझ दी, ये हमारा आई कार्ड है। और जब तक हम अपने स्वरूप स्मृति में स्थित नहीं होते और हम ये कहें हमें बाबा का अनुभव हो जाए, सोचिए बाबा का अनुभव कैसे होगा। बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बच्चे संग का परहेज रखो अगर बाबा से मिलना है। हम कहते हैं हमारा कोई बुरा संग नहीं है, हम किसी ऐसी वैसी सोसाइटी में बैठते ही नहीं, लेकिन हमको बाबा ने बता रखा है कि परमानेंट आपका एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमेशा ही आप उस कंपनी में रहते, उसके बिना रहते ही नहीं, जबकि वो कंपनी झूठी है। झूठ के संग में हमेशा रहो और आपको जी हमारी संगत तो बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अब झूठ की संगत कौन सी है? क्योंकि जो चीज नाशवान है उसे झूठा कहा गया है। ये देह नाशवान है, ये झूठी है, और आत्मा इस झूठे के संग के बिना रह ही नहीं सकती। उसे इस झूठ के संग में ही रहना है, लेकिन इसके संग में रहते इस झूठ का इफेक्ट मुझे ना आए, इसका प्रभाव मुझे ना आए। जैसे इस कलयुगी तमोगुणी सृष्टि में हम रहते हैं, रहना ही यहां पड़ेगा, कहीं सतोगुणी सृष्टि नहीं हमारे लिए रखी हुई जहां हम चले जाएंगे। लेकिन तमोगुण में रहते हुए बाबा ने हमको सतोगुणी स्थिति बनाने का आदेश निर्देश दिए हैं। ठीक बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि तू रहता तो इस देह रूपी झूठे घर में है, ये संग तेरा हर समय इसमें है, लेकिन तू इस झूठ के साथ रहता हुआ भी अपने वास्तविकता को कभी भुला ना देना। बार बार याद रखना मैं कौन। जब तू अपने पोजीशन में इस शरीर में रहेगा तो ये देह नाशवान झूठी है, इसका संग तुझे अपना रंग नहीं लगाएगा। एक डॉक्टर है, इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, छूत की बीमारियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर को छूत के मरीज के पास जाना पड़ता है, उनका इलाज करना होता है। लेकिन डॉक्टर उस हॉस्पिटल में अपना प्रिकॉशन, अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, जिससे कि वो छूत की बीमारी उसे ना लग सके, वो पहले अपना ध्यान रख लेता है, फिर वो छूत की बीमारी के पेशेंट्स के पास जाता है। बाबा भी हम बच्चों को कहता है इस देह में रहते हुए जब भी कोई कर्म करना हो याद रखना मैं आत्मा इस देह द्वारा ये कर्म करने जा रहा हूं। अपने पोजीशन को नहीं भूलना, और ये तो केवल तेरे कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं पुलिसमैन हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं व्यापारी हूं, सारा दिन तेरी ये स्मृति। और फिर तो कहे कि मेरा योग नहीं लगता, तेरा योग लगेगा कहां से? संग तो सारा दिन देह का रहा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं नानी हूं, मैं दादी हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। जब ये स्मृति तेरी इतनी परिपक्व हो चुकी है और तू अपने स्वरूप की स्मृति में कितनी देर रहती है। जब आत्मा अपने स्वरूप में जितना जितना परिपक्व होती चली जाती है उतना देह में रहते भी वो देह से न्यारी है। उसे देह में रहते भी देह के संग का रंग नहीं लगता, बल्कि आत्मा अपना रंग इस देह की कर्म इंद्रियों पर लगाती है। उसका एक एक अंग जिसका गायन है कमल हस्त, चरण कमल, नैन कमल, मुख कमल, प्रत्येक कर्म इंद्री शुद्ध होती चली जाती। तो बाबा बच्चों को ये तरीके बताता है कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ चिंतन में लाओ। और होता क्या है कि हम श्रेष्ठ चिंतन की बजाय कुछ व्यर्थ चिंतन में ज्यादा चले जाते हैं। स्व की विस्मृति हो जाती है, व्यर्थ के चिंतन में चले जाते हैं। जहां चार शब्दों से काम बनता है वहां 10 शब्द ना बोले हमें चैन नहीं आता, कईयों की वो नेचर हो जाती। बहुत ही अच्छी एक बात यहाँ एक बहन ने सुनाई थी जो मैंने यही सुनी थी, मैं आपको सुना देती हूँ, मुझे अच्छा वो एग्जाम्पल लगा। एक हंसी का ही एग्जाम्पल था उनका, लेकिन कैसे वेस्ट जिस मनुष्य की आदत होती है वो वेस्ट बहुत करता है। हम कई बार प्लेन में ट्रेन में बैठते हैं, एक बात खत्म हुई दूसरी शुरू की, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू की, क्योंकि आपस में बैठे हैं, अब कैसे गुजारा, सारा दिन कैसे बिताएं। फ्लाइट में बैठे हैं 6-8 घंटे बिताने हैं, कैसे बताएं। बात से बात नहीं कहती हूँ, कितना इनका दिमाग है, कैसे लगे हुए हैं। व्यर्थ की एनर्जी बहुत चली जाती है, और जब व्यर्थ जाता है तो हम समर्थ को अपने पास रख नहीं पाते। तो एक अच्छे एग्जाम्पल दे रही थी कि किसी बात को थोड़े शब्दों में भी कहा जाता है, किसी बात को बड़ा लंबा भी कहा जाता है। कह रही थी किसी एक ने पूछा किसी राहगीर से कि उसने कहा कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी कहाँ रहती, तो कहा कि आप सीधे चले जाइए, यहां चार चौराहे आएंगे, लेकिन तीसरे चौराहे से आप मुड़ जाना। फिर जहां तीसरे चौराहे से मुड़ेंगे वहां चार पार्क मिलेंगे आपको, लेकिन आप तीसरे पार्क से मुड़ जाना और आगे जाएंगे तो सामने सामने आपको चार कमरे दिखाई देंगे, आप चार कमरे में से तीसरे कमरे से मुड़ जाना और तीसरे कमरे से मुड़ने पर आपको चार अटैची पड़ी हुई दिखाई देंगी, उसमें तीसरी अटैची को खोलना और तीसरी अटैची में एल्बम पड़ी है, उसमें बहुत सी एल्बम है, आप तीसरी एल्बम को खोलना और उसके अंदर मेरी माँ का चित्र है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मुझे नहीं मालूम सोनिया गांधी कहाँ रहती। अब देखो बात क्या है, लेकिन उस बात को करने का लहजा क्या है। भाई इतनी सी बात कहनी है तो आप जरा कह दीजिए ना भी मुझे नहीं मालूम, या किसी अन्य से पूछ लीजिए आपने क्या चुराहे और क्या पार्क और क्या टैची और क्या कमरे सारे गिना दिए, और कहना यही है कि मुझे मालूम नहीं एड्रेस कौन सा है। तो मैं हम जो हंसते हैं तो हम कई बार अपने ऊपर भी हंसते हैं कि हम भी कई बार ऐसे व्यर्थ में कर लेते हैं। मैं कई बार देखती हूँ कभी किसी माता को कहते हैं भी कल वहां जाना है, इतने बजे चले जाएंगे तो फायदा है, थोड़ी देर से जाएंगे तो चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी तो जो चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। कहेंगे हाँ ठीक है दीदी वहां चले जाए ना, टाइम से जाइए, और नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, जाना तो टाइम से चाहिए ना दीदी, हाँ टाइम से चाहिए, फिर मिलेगी नहीं, नहीं फिर मिलेगी नहीं, फिर जाना भी तो फालतू हो जाएगा ना, जाना भी फालतू, फिर जाना मैं समझती टाइम से जाए तो ठीक है। अरे बाबा जी हो गई बात, काफी हो गया, अब उनकी नेचर है, आप उनको कहो तो वो भी हंसती हैं। मैं कहती हूँ कईयों की नेचर ऐसे से बोलते हैं, वो भी हंसती हैं। अच्छा दीदी ऐसे बोलते हैं, और वो स्वयं ही बोलती हैं, उन्हें नहीं पता चलता। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, कई बच्चों ने ऐसी आदतें अपनी बना ली हैं कि अपनी आदत का उन्हें पता नहीं चलता, इसलिए हम कभी किसी की कमी और कमजोरी तो देखते हैं लेकिन हमको अपनी कमी और कमजोरी की तरफ भी अटेंशन देना जरूरी है। बाबा कई बार कहते हैं दूसरे को देखने की नजर बड़ी तेज है लेकिन नजदीक की नजर बच्चों की कमजोर हो जाती, इस नजर को भी हमें तेज करना है, हमें स्वयं को स्वयं का निरीक्षण करना है। मान लीजिए आपने किसी को कोई अच्छी बात कही लेकिन आप ये समझते हो मैंने जो कहा वो सत्य कहा, श्रेष्ठ कहा और लाभदायक कहा, लेकिन आपकी बात को स्वीकारा नहीं गया और किसी किसी ने आपकी बात को रिजेक्ट भी कर दिया, कोई कीमत नहीं दी, आपको बड़ा कष्ट होता है कि मैंने बात ठीक कही, सत्य कही, वैल्यूएबल बात कही और देखो मेरी बात की कैसे सुनी अनसुनी कर ली। आपकी मनोस्थिति में कुछ परेशानी सी आती है, हम क्यों ना ये समझ जाएं कि हर मनुष्य की अपनी अपनी लाइकिंग होती है, अपनी अपनी पसंदगी होती है, कोई किस बात को पसंद करता है, कोई किस बात को पसंद करता है। अगर मेरी किसी चीज को या मेरी किसी बात को किसी ने पसंद नहीं किया और आप कहते हो मैंने ठीक कहा, अच्छा कहा, उपयुक्त कहा, तो फिर आपको चिंता या चिंतन क्यों चल रहा है? आप अपनी अच्छाई की वैल्यू दूसरों से डलवाना, उस वैल्यू को वैल्यूएबल समझते हो चीज को, आपको अपनी चीज पर अगर विश्वास है तो फिर आपकी मनस्थिति खराब क्यों होती? इसलिए जो सत्यता है उस सत्यता में हमेशा रहे। मान लीजिए आपने किसी को अच्छी बात कह दी, अच्छी बात अच्छी ही होती है, लेकिन किसी परिस्थिति में वो अच्छी बात अच्छी नहीं है, उस मौके पर वो बात अच्छी नहीं है। जैसे मैं कभी कभी एग्जाम्पल देती हूँ कि सब कहते हैं भाई राम जी का नाम सत्य, कहते हैं ना राम नाम सत्य है, और अगर किसी की शादी में जाकर कहें जी राम नाम सत्य है, आगे आगे चल पड़ो को जी राम नाम सत्य है, तो आपको पकड़ के बाहर निकाल देंगे, ये आया कौन और कहां से आया। आप कहेंगे मैंने कोई गलत काम किया क्या, मैंने राम नाम सत्य है असत्य तो नहीं, मैंने यही तो कहा। लेकिन मौका मौका बात बात को देखा जाता है, किस समय कौन सी बात कहनी उपयुक्त है और किस समय वो बात कहनी नहीं उपयुक्त है, उसको थोड़ा देखा जाए। और मान लीजिए मैंने उपयुक्त भी कही और मेरी बात की किसी ने वैल्यू नहीं जानी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात आपने कही, आपकी मनस्थिति अच्छी रहे, आज नहीं तो कल आपकी सत्यता जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो कभी नाश नहीं होता, आज नहीं उसकी कदर हुई तो एक दिन उसकी कदर जरूर हो जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू किसी से ना डलवाएं, हम अपनी वैल्यू स्वयं बनाएं। भाई मुझे आज्ञा मिली है, नेक्स्ट क्लास की दीदी हमारी आ चुकी है, इसलिए मुझे यहीं स्टॉप करना है। ओम शांति।
देते चले देते